सजा देने का नया तरीका। अरमान बिना कुछ कहे आस्था को घूरते हुए वहां से सीधा जिम रूम की ओर में चला गया। अब आगे अरमान के वहां से जाने के बाद आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर कुछ सोचकर उसका चेहरा अचानक डार्क हो गया और वो खुद से बुदबुदाई, बस कुछ दिनों और मिस्टर सिंघानिया, उसके बाद हम आपको पूरी तरह से ठीक कर देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। इसलिए सख्ती के साथ अपना मन मजबूत करते हुए उसने जल्द ही रूप में एक मैसेज सेंड कर दिया था। उसका फैसला अटल था, वो अपने पति की यादें किसी भी कीमत पर एक बार फिर हासिल करके रहेगी। फिर वो मन ही मन प्लानिंग बनाते हुए सोच रही थी, जिस एक्साइटमेंट से रॉकी ने अपने बॉस को फोन किया था और जिस तरह का व्यवहार उसने उसके साथ किया था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि उसका बॉस आस्था के लिए कितना पागल है। इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचते हुए आस्था गहरी सोच में डूबी हुई थी। वहीं दूसरी ओर रॉकी सम्राट के सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ था। उसने सम्राट को अपनी तरफ तीखी निगाहों से घूरते पाया। उसकी निगाहें खास तौर पर डरावनी थीं। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। सम्राट के चेहरे पर गुस्सा पसर गया था, उसकी आंखों में गुस्सा हावी होता जा रहा था। वो लगभग रॉकी पर चीखते हुए बोला, तुम इतने बड़े गुंडे हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की इतनी आसानी से तेरे हाथों से निकल गई? और उससे भी बड़ी बात, तुम ऐसे कैसे कुछ लड़कों से मार खा कर आ गए? अगर तुझे वो लड़की मिल गई थी तो तुझे मर कर भी उस लड़की को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। तू भूल गया कि तू ब्लैक डेविल किंग का आदमी है, तुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सम्राट की फटकार सुनते ही रॉकी की आंखें भर आई थीं, क्योंकि पहली बार वो अपने बॉस का दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पा रहा था। सच तो ये था, रॉकी आस्था को दिलो जान से ढूंढ रहा था और आस्था उसे मिली भी थी, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी सिचुएशन बदल गई और वहां का माहौल बिगड़ गया। सम्राट के खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर रॉकी अटकती हुई आवाज में सिचुएशन संभालते हुए बोला, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही उस लड़की को ढूंढकर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। प्लीज आप मुझकर भरोसा रखिए, मैंने ऑलरेडी पूरे क्लब के स्टाफ से उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया है। अब वो लड़की आपकी नज़रों से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। अब जैसे ही रॉकी के शब्द खत्म हुए, वैसे ही सम्राट अपनी जगह से उठकर अचानक जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। सम्राट को ऐसे बेपरवाह अंदाज में हंसते हुए देखकर रॉकी के शरीर में सिहरन दौड़ गई और वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, मुझे कुछ मत करना प्लीज, एक आखिरी बार मौका दे दो, बस एक आखिरी बार। मैं बचपन से आपके साथ रहा हूँ, आज तक मैंने आपकी सारी ख्वाहिश पूरी की है और आपका दिया हुआ हर काम पूरा किया है। प्लीज बॉस मुझे मत मारो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। कहीं न कहीं सम्राट की खतरनाक हंसी का मतलब रॉकी अच्छी तरह समझ चुका था। उसे पता था कि शायद उसकी जान खतरे में है। तभी सम्राट ने बेहद रहस्यमय तरीके से उसे जवाब दिया, ठीक है, तुम बचपन से आज तक मेरे साथ रहे हो, मेरा हर हुक्म मानते आए हो, तो इसलिए मैं तुम्हें जीने का एक मौका जरूर दूंगा। तुम्हें एक मिनट तक, सिर्फ एक मिनट तक मेरे इन शिकारी कुत्तों से बचना होगा। अगर तुम एक मिनट तक इन शिकारी कुत्तों से लड़ते रहे और तुमने अपनी जान उन कुत्तों से बचा ली, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सम्राट शब्द ऐसे थे मानो जैसे उसके ऊपर किसी ने बम गिरा दिया हो। रॉकी का दिल जोरों से धड़कने लगा, डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो टूट सा गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो अपने गुस्सेल बॉस से बहसबाजी करके अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। फिलहाल वो अब इस सिचुएशन से पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी भावनाओं को काबू करके सीधा हॉल से गार्डन में आ गया, और देखते ही देखते सम्राट ने अपने पास खड़े दो काले रंग के भयानक शिकारी कुत्तों को तुरंत रॉकी के ऊपर छोड़ दिया। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसे पता था कि उसे बस एक मिनट तक स्ट्रगल करना है। अगर वो एक मिनट तक इन कुत्तों से अपनी जान बचा लेता है तो उसकी जिंदगी बच सकती है, वरना आज उसकी जान कोई नहीं बचा सकता। कहीं ना कहीं रॉकी मानसिक रूप से काफी टूट चुका था। वो रो रहा था और पूरे गार्डन में तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन सम्राट के शिकारी कुत्तों ने कुछ सेकंड के अंदर ही रॉकी को पकड़ लिया और उस पर पूरी तरह झपट पड़े। वे उसे नोचने के लिए रॉकी पर हमला करने लगे। रॉकी के कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, फिर भी वो किसी तरह कुत्तों के काटने से बच पा रहा था। देखते ही देखते एक मिनट कंप्लीट हो गए, और एक मिनट कंप्लीट होते ही सम्राट ने कुत्तों को इशारा किया। सम्राट के एक सीटी बजाते ही कुत्ते वापसी में उसके पास चलाए। अब रॉकी बहुत बुरी हालत में था, उसका शरीर जगह जगह चोटों से भरा हुआ था, उसके घावों से खून निकल रहा था। सम्राट रॉकी की खिल्ली उड़ाते हुए उसके पास चला आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वाओ रॉकी, बहुत अच्छे, तेरी जीने की इच्छा तो कुछ ज्यादा ही है, आखिर तूने इन शिकारी कुत्तों से अपनी जान बचा ही ली। इतना बोलकर उसने रॉकी को वहां से जाने का इशारा किया और कहा, अपना इलाज करवाओ और हाँ, कल के कल उस लड़की को मेरे सामने लेकर आना। ये बोलने के बाद सम्राट के शांत और मुस्कुराते चेहरे पर गुस्से ने कब्जा कर लिया था। रॉकी हां में सिर हिलाया और जैसे तैसे अपने कपड़ों को संभालते हुए वो अपना इलाज करवाने के लिए वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अब ये डर बैठ चुका था कि अगर कल के कल वो लड़की नहीं मिली तो उसका अंत पक्का निश्चित है, क्योंकि इस बार सम्राट उसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। वहीं दूर से ये दृश्य आहान और ध्रुव दूरबीन से देख चुके थे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सम्राट और रॉकी की सारी बातें भी सुन ली थीं। रॉकी को इतनी बुरी हालत में देखकर थोड़ी देर के लिए वो दोनों सन रह गए थे। अब आहान और ध्रुव दोनों की आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। ध्रुव और आहान सोच रहे थे, क्या आस्था भाभी को ब्लैक डेविल किंग के भेजना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि ये सम्राट तो पूरी तरह साइको है। ये तो राजवीर से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। उसके पास आस्था भाभी को भेजना सेफ नहीं है। दोनों ही आस्था की सिक्योरिटी को लेकर परेशान हो रहे थे। घर जाकर उन्होंने ये सारी बात अपने पूरे ग्रुप के साथ डिस्कस की। इस वक्त अरमान को नहीं पता था कि उसके पीछे किस बात की चर्चा चल रही थी, लेकिन आस्था इस बात को लेकर बहुत ही शांत थी। उसने बिना डरे बेखौफ होकर जवाब दिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरूंगी नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगी और आऊंगी तो एंटीडोट लेकर। कहीं न कहीं ये सोचकर आस्था ने अपना इरादा और मजबूत बना लिया था। वहीं दूसरी ओर राधिका, रश्मि, रौनक और मारिया एक साथ बैठे हुए थे। अब क्योंकि एंजल भी लौट आई थी, पांचों लड़कियां एक साथ वक्त बिता रही थीं और वो सब वहां के माहौल से खुल मिल गई थीं। तभी रौनक रश्मि को देखकर कुछ सोचते हुए बोली, रश्मि दीदी देखिए ना, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपकी गोद भराई की रस्म नहीं हुई। मेरी रस्म हुई थी, आस्था की भी रस्म हुई थी, अब आपकी भी गोद भराई की रस्म होनी चाहिए। रौनक के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर फौरन ही रश्मि का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे उसका पेट अब दिखाई देना शुरू हो चुका था। वहीं राधिका इस बात पर हल्का सा एक्साइटेड होकर बोली, अरे वाह, गोद भराई की रस्म, उसमें तो बहुत मजा आएगा। लेकिन इससे पहले राधिका आगे कुछ और बोल पाती, उससे पहले वंशिका ने डर के मारे उसे बीच में टोक दिया, लेकिन इस बार मैं कोई लड़का वड़का नहीं बनने वाली, पिछली बार तो ध्रुव ने लगभग मेरी जान ही ले ली थी, इस बार मैं नॉर्मली ही अपना एंटरटेनमेंट करूंगी।
वंशिका की डरी हुई शक्ल देखकर सभी लड़कियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और वो सब जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि सबको रौनक की गोद भराई रस्म याद आ गई, जब ध्रुव ने किस तरह वंशिका का गला पकड़कर उसे तंग कर दिया था, मानो जैसे वो कोई लड़का हो। तभी नानी माँ वहाँ सभी के लिए खाना लेकर आती है। नानी माँ हमेशा उन सभी के खाने पीने का ध्यान रखती थी। ये ध्यान रखती कि किसे कब क्या खिलाना है और किसे क्या नहीं। रौनक और मारिया को छोटे छोटे बच्चों को फीड भी करना होता था, इसलिए उन्हें भरपूर डाइट का हल्का खाना दिया जाता था। अब जैसे ही नानी माँ ने उनकी बातें सुनी तो वैसे ही वो रिएक्ट करते हुए एकदम से बोली, अरे वाह, तुम लोगों ने तो गोद भराई की रस्म का प्लान भी बना लिया। हम भी कितने दिनों से इसी रस्म के बारे में सोच रहे थे, लेकिन दामाद जी के गुस्से भरे मिजाज को लेकर हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तो हमारे पास एक और घर है ना, रघुवंशी मेंशन, अब हम गोद भराई की रस्म वहां जाकर कर सकते हैं और दामाद जी को पता भी नहीं चलेगा। नानी माँ का ये आइडिया सुनते ही सभी लड़कियों के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। वहीं नानी माँ अब अरमान को नाराज करने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थीं। अरमान को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थीं, ये बात नानी माँ अच्छी तरह समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़कियों को रस्म सेलिब्रेट करने के लिए रघुवंशी मेंशन ले जाया जाए, क्योंकि वैसे भी गोद भराई की रस्म में लड़कों को कोई काम नहीं होता। तो फाइनली फैसला हुआ कि फंक्शन रघुवंशी मेंशन में ही किया जाएगा, जिसे सुनकर सभी लड़कियों ने मिलकर नानी माँ को कसकर गले से लगा लिया। एंजल तो एकदम से एक्साइटेड होकर बोली, नानी माँ आप तो मेरे मन की बात जानती हैं ना, मैं कब से ये छोटे छोटे रस्म और रिवाज मिस कर रही थी। वैसे भी यहाँ आने से पहले अविनाश ने मुझे कहा था कि हम यहाँ सिर्फ 2 से 3 दिन ही रुकेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम अब कुछ और दिन यहाँ रुकने वाले हैं, इसलिए मैं अब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। आप नहीं जानती कि मैं इस रस्म और रिवाज को देखने के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंजल की एक्साइटमेंट देखकर सब लोग काफी खुश हो रहे थे और तभी उन्हें रौनक बुझी हुई आवाज में सुनाई देती है, लेकिन आस्था का पता नहीं वो गोद भराई की रस्म में पार्टिसिपेट कर पाएगी या नहीं, वो कहीं और बिजी है, समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करती रहती है। रौनक के सवाल पर नानी माँ ने फीके अंदाज में जवाब दिया, बेटा जिसके पति की याददाश्त चली जाए, उसका पति उसे अपना दुश्मन समझने लगे, उस लड़की की क्या हालत होगी, उसके दिल पर क्या गुजर रही, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिलहाल आस्था बिटिया बस इसी उम्मीद में एक एक दिन गुजार रही है कि कब दामाद जी उसे प्यार से बोले, आस्था मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ गया है। नानी माँ के शब्द दिल छू लेने वाले थे और इमोशनल थे, जिसे सुनकर अगले ही पल सबके चेहरों पर उदासी छा गई। कोई कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। तभी रौनक तुरंत सिचुएशन संभालते हुए बोली, सॉरी नानी माँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन आस्था के बिना पार्टी में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ आप जाकर उसे मनाइए ना। आप जानती है ना, रश्मि दीदी की गोद भराई की रस्म में उसका भी शामिल होना कितना ज़रूरी है, और इसी बहाने उसका भी दिल बहल जाएगा। फिर थोड़ा रुककर वो बात बदलते हुए नटखट अंदाज में बोली, और वैसे अब तो मैं भी काफ़ी ठीक ठाक महसूस कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी गोद भराई रस्म में हल्का फुल्का डांस कर सकती हूँ। इस पर नानी ने प्यार से रौनक के माथे पर हल्की सी चपत लगाई और चुटकिले अंदाज में बोली, बेटा आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकती हो, लेकिन अभी भी कम से कम 40 दिनों तक आप दोनों को अपना बहुत ख्याल रखना होगा, जब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से मजबूत ना हो जाए। उसके बाद दिल खोलकर फंक्शन वगैरह एंजॉय कर लेना, ठीक है? तब तक आपके शरीर में धीरे धीरे ताकत भी आ जाएगी, बस टाइम से खाना खाओ, डाइट लो। नानी माँ की आवाज़ में प्यार और ममता झलक रही थी, जिसे महसूस करके रौनक थोड़ी इमोशनल हो गई। फिर वो बेहद मासूम और मीठी आवाज़ में बोली, थैंक यू नानी माँ, अगर आप नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या होता। वही मारिया जो हमेशा चुपचाप रहती थी, वो अचानक उठकर नानी माँ के पास चली आई और उनका हाथ थामते हुए कोमलता से बोली, पहली बार एहसास हो रहा है कि बड़ों का साया सर पर रहना कितना ज़रूरी होता है। सचमुच नानी माँ, आप बहुत खेट हैं। ये बोलकर मारिया ने अचानक नानी माँ को किस कर दिया, जिस पर नानी माँ एकदम से शर्मा गई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, अरे बिटिया तुम लोग भी ना। ये कहकर नानी माँ वहाँ से चली गई। अब नानी माँ को जल्दी से कल के रस्म और रिवाज के लिए तैयारी शुरू करनी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें आस्था से थोड़ी बातें क्लियर करनी थी। नानी माँ जैसे ही आस्था के पास आईं, उन्होंने रश्मि की गोद भराई के बारे में उसे सब कुछ बताया और साथ ही साथ में उन्होंने आस्था को ये भी कहा, हम इस तरह से किसी की खुशियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते बेटा। ये सुनकर आस्था को गिल्टी फील हुआ, क्योंकि एंटीडोट के चक्कर में वो अपने परिवार को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही थी और अपने बेटे के साथ भी ठीक से वक्त नहीं बिता पा रही थी।